मेरा आविष्कार है, इसमें भी कई बातें हैं और बहुत बातें ऐसी हैं मेरी युक्ति संगत। एक तो शास्त्र में श्रद्धा रख करके पढ़े और ये युक्ति संगत जो बैठ जाती है चट से, तो ऐसी ऐसी बातें मिली है कई जो चट बैठ जाए, बात करे सुने बैठे बैठ जाए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं और आप फरमाओ आविष्कारों की बात हो नहीं। हाँ, नयापन क्या है, उनको चुन करके अलग निकाल कर कह दे तो वो नहीं रहती, और वो आदमी की दृष्टि है और बैठ जाती है भीतर। कोई शास्त्रों से नहीं, नहीं शास्त्रों में नहीं हो रही थी बात है ऐसी नहीं, पर होते हुए भी जैसे आप देखोगे वेदांत में श्रवण मनन निर्देशन पर ही जोर है सब, और उसके बाद अधिकारी होना चाहिए ऐसा, और बात बिल्कुल सच्ची है। अधिकारी को जितना लाभ होता है अनधिकारी को नहीं होगा, परंतु गीता कहती है सब अधिकारी अब इससे सुदूराचार्य ये तीसु पापी होने है। वो भी परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है, ये बात भी एक नई है। तो अधिकारी होता है, हरेक ग्रंथ का भी अधिकारी होता है, साधन का भी अधिकारी होता है। इसमें अधिकारी मनुष्य मात्र है। अब एक विलक्षण बात है, मात्र मनुष्य अधिकारी, कोई भाई बहन किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी देश वाला कोई कौन हो, परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी है। सांसारिक धन संपत्ति वैभव मिलने में, पद अधिकार मिलने में अधिकारी की आवश्यकता है, अनधिकारी को नहीं मिलती, मिलती है तो वो उसका उपाय उसका उपयोग ठीक नहीं कर सकता, परंतु पारमार्थिक उन्नति में सब अधिकारी। केवल भीतर की लालसा चाहिए, इच्छा चाहिए बस। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में क्रिया मुख्य है, पदार्थ और क्रिया है उनसे वो आगे चलता है, इसमें भाव और बोध मुख्य है। अपना भाव बन जाए भक्ति की प्राप्ति हो जाए, पर केरा उतर कर बोध बिना विचार कर ले समझ ले तो जितना समझ लेगा उतना ज्ञान हो गया, जितना भाव बन गया उतना ज्ञान हो गया, और जितना त्याग बन गया उतने ऊंचा तो उसका हो ही गया। और भाव है, बोध है, त्याग है, ये अपना इसमें प्रसन्नता नहीं है। इसमें आविष्कार में क्या है कि अपनी आंखों से देखो और अपने पैरों से चलो। ऐसे नहीं गुरु महाराज बताएंगे तब होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं उसका खंडन नहीं करता हूँ, साथ में गुरु की बड़ी महिमा है और गुरु से ही सब मिलता है, परंतु इसमें गुरु बता दिए गए हैं उसके अनुसार अपने आप चलो। ज्ञान भी अपने आप होगा, चलना भी अपने आप होगा, उसमें अगाड़ी वृद्धि भी अपने आप होगा। उसमें एक बात है कि जैसे विवेक है तो विवेक है सत असत का, वेदांत तो आरंभ होता है विवेक से। विवेक वैराग्य समाधि से संपत्ति मुक्त होता तो सबके आरंभ में विवेक है। उस विवेक के विषय में शास्त्रों में आता है कि विवेक ऐसा देगा, जैसे रामायण में आया है अस विवेक जब दे ही विधाता, ऐसा विधाता विवेक देगा। उसमें नया आविष्कार है कि विवेक सबको है, प्राणी मात्र के पास विवेक है, भगवान का दिया हुआ विवेक है, ये अनादि है। विवेक पैदा नहीं होता है, विवेक दिया है। जैसे भगवान ने जन्म दिया है और इसके लिए प्रारंभ दिया है कि तुम निर्वाह तो प्राप्त से करो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करो, ये जन्म से दिया हुआ है। ऐसे ही प्राणी मात्र को विवेक दिया है और असली ऊंचा विवेक मनुष्य मात्र को दिया है। कैसे ही कोई मनुष्य क्यों न हो, सांसारिक बुद्धि में तो भेद है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, ऐसे बुद्धि उसमें भी भेद है। बुद्धि तेज हो तो जल्दी काम करेगा, परंतु पारमार्थिक उन्नति में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसमें खुद की रुचि उनसे खुद की वेदांत आदि पढ़े हुए मन बुद्धि को ही लगा देगी, अंतकरण की वृत्ति है, अंतकरण की शुद्धि होने से होगा। अरे अंतकरण की शुद्धि होने से कार्य होगा, कर्ता को क्या मिलेगा, कर्म शुद्ध होगी बढ़िया होगी तो लिखना बढ़िया होगा, परंतु लेखक बढ़िया हो जाएगा वो भैया घटिया क्या है। ऐसे अंतकरण शुद्ध होगा तो अगर ही क्रियाओं के करने में अंतकरण शुद्धि काम देगी, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति की आपकी इच्छा हुई तो इसमें अंतकरण के शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। जहां आपकी परमात्मा की इच्छा हुई शुद्ध हो गया, उसमें अंतकरण शुद्ध करना नहीं पड़ेगा, केवल पारमार्थिक इच्छा हो जाए। अब इसमें लगा देंगे वही पुण्य होगा, पुराने शुभ कर्म होंगे, अच्छा काम करेंगे तब उत्साह होगी, ऐसा कहना नहीं है। ऐसी नई बात कई है ऐसी जो तो बिल्कुल अभी हो सका अभी। तो विवेक अनादि है, जैसे बिजली तत्व है सब जगह ही, वो बिजली जहाँ बल्ब होता है लट्टू होता है वहां प्रकट होती है बिजली, तार में और अभाव नहीं है, सब जगह है। ऐसे विवेक होते हुए भी बुद्धि में विवेक आता है। वेदांत पढ़े हुए पूछो तो बुद्धि का कार्य बताएंगे विवेक, विवेक बुद्धि का कार्य नहीं है, बुद्धि का भी कारण है और बुद्धि में प्रगट होता है, पर विवेक है मूल में। ये बात मैंने सुनी, पुष्पा पढ़ी तो मेरे बहुत बड़ी शंका रही कि ऐसे कैसे विवेक है, कैसे खोज करी, लेख पढ़ा मैंने सुनी सत्संग के द्वारा कि विवेक जब है अपने आप में विवेक है, तो मैंने खोज करी तो हमारे गीता में मिल गई, प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभाव, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है। प्रकृति पैदा हुई, पुरुष पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। दोनों अनादि है। तो दोनों अनादि है तो दोनों का भेद शादी कैसे होगा? दोनों का भेद भी अनादि है। और भेद के ज्ञान कोई विवेक है मिश्र पृथक भावे से किया जाए तो प्रकृति पुरुष का भेद है, ये अनादि है। कैसे अनादि है, शादी कैसे है? जब प्रकृति पुरुष दो अनादि है तो दोनों का भेद भी अनादि है, दोनों का विवेक भी अनादि है। तो विवेक अनादि है और सब में है ये, और वैराग्य भी है। इनको उपयोग में नहीं लेते हैं, नहीं तो विवेक सब में है। ये संसार नाशवान है ये कौन नहीं जानता है? इसका आदर नहीं करते हैं। नाशवान है ये सुन लिया तो इनको महत्व नहीं देते हैं। नाशवान पदार्थों में रात दिन लगे हुए हैं, नाशवान के पैदा करेंगे भाई नाश हो जाएगा। कितने ही पैदा करोगे, क्या करोगे, तकलीफ दोगे, खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं। तो ऐसा ज्ञान सबको है, ये विवेक अनादि है, सदा से है, सबके है। अब इसका जितना आप आदर करोगे उतना विवेक आपका बढ़ जाएगा, जितना काम में लोगे उतना विवेक बढ़ जाएगा, विचित्र विवेक। तो विवेक स्वयं बढ़ता है जो साधन करता है, तो विवेक स्वयं बढ़ता है, इसके देने की जरूरत नहीं है। और साथ माता गुरु से ज्ञान होता है। गुरु का तो गुर है बताया हुआ, वो गुर आपके पास में है। भगवान ने जब उद्धार करने के लिए मानव शरीर दिया तो उद्धार का विवेक भगवान ने नहीं दिया है? क्या कमी है उसके घर में? क्या उद्धार करने की बुद्धि नहीं दी है? उद्धार करने की परिस्थिति नहीं दी है? ये कैसे होगा? भगवान के दी हुई वस्तु में अधूरा पर नहीं है। जो गुरु जी सिखाते हैं पूर्ति करेंगे वो अधूरापन है, ऐसा नहीं है। ऐसी बातें कही है मेरे को मिली है साथ में संतों की कृपा से, विचित्र विचित्र बातें मिली। नहीं तो ये बात मिले नहीं, गुरु होगा तब होगा। अरे गुरु होगा ये बात सच्ची है, परंतु आपका विवेक है वही गुरु है। ऐसी घनी बातें हैं, एक दो चार नहीं है, मुख्य मुख्य बातें सो बताई। अब फिर बताता हूं, आपके स्वयं के लगन होगी तो उस तरह की परिस्थिति नहीं बन जाएगी। व्यवहार में अपने प्रावध के अनुसार ही आपको धन संपत्ति वैभव मिला है कर्मों के अनुसार, परंतु वो नया प्रावध आपका बन सकता है, नया प्रावध नया बन सकता है। कर्मों से नया बन जाए, योग जप से, ध्यान से, कीर्तन से, इनसे नया बन जाए, इतनी बात नहीं है। आप पैसा का निरादर ना करें और महत्व भी ना दें। निरादर करना क्या है कि फालतू खर्च कर देते हैं, ऐसारे में खर्च कर देते हैं, खेल तमाशों में खर्च कर देते हैं, ये पैसे का दुरुपयोग है। ऐसे खर्च करेगा उसको नया प्राप्त किया, पुराना पैसा भी नष्ट हो जाएगा। धन का नाश होता है व्यसनों के सेवन करने से, व्यसनी में लग जाता है, राज्य चला जाता है। युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा है, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। इतने धर्मात्मा थे, पर उनमें भी एक जुआ खेलने की आदत थी, उससे ये दुख पाए, जितने दुख पाए गए जुआ खेलने से। तो व्यसनों से धन नष्ट होता है, राज्य नष्ट हो जाए, इज्जत नष्ट होती है। तो व्यसनों के वशीभूत न होने से ये स्वतः रह जाती है, और धन का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे, अपने सुख और भोगों में खर्च करना है, ये दुरुपयोग है। सत्कर्म और दुष्कर्म असत्कर्म, इसकी भी व्याख्या बड़ी विचित्र है। जितना अपने लिए करता है वो असत्कर्म है, और अपना स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के लिए करता वो सत्कर्म हो जाएगा। झाड़ू देना सत्कर्म हो जाएगा, काम करना सत्कर्म हो जाएगा, व्यापार करना सत्कर्म हो जाएगा, नौकरी करना सत्कर्म हो जाएगा। जो आप काम करते हो उसमें स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर करोगे वो सब काम सत्कर्म हो जाएंगे। ये नया बहिष्कार है, ये तो सत्कर्म अलग अलग है, नया कर्म है जो सत्कर्म नाम से अलग होते हैं। पर इसमें ऐसी विलक्षण बात है कि वो सब सत्कर्म हो जाएंगे। भाव से शुद्धि देती है तो तपो मानस हो जाती, भाव की अच्छी से शुद्धि करो सत्कर्म हो जाएंगे। और जो भाव शुद्ध हो गया तो अच्छे से अच्छा व्यवहार भी पाप कर्म हो जाएगा। किसी को धोखा देने के लिए आदर करो, सत्कार करो, बढ़िया भोजन बनाओ, भोजन में जहर दे दो, मर जाए तो ठीक है, देखने में बड़ा अच्छा बर्ताव है, परंतु वो असत्कर्म है, पाप कर्म है, सत्कर्म नहीं हो सकता। और जहां त्याग आया भीतर, त्याग आते ही उनकी बात विलक्षण हो जाएगी, वाणी विलक्षण हो जाएगी, उसका आचरण विलक्षण हो जाएगा, उसके दर्शनों में विलक्षण आ जाएगी। जहां भीतर से जड़ चीजों का महत्व नहीं दिया, ये परमात्मा का अंश है चेतन, इसके मूल्य को समझते नहीं लोग, इस वास्ते धन के अधीन मानते, पदार्थों के अधीन आपको मानते हैं, जमीन जायदाद रुपयों के अधीन मानते हैं, और उनके कारण से अपना बड़ेपन होना है बिल्कुल झूठी बात है। बड़े होते हैं उपयोग अच्छा करने से आप बड़े आदमी हो जाते हो, रुपयों से आदमी बड़ा नहीं होता है, सदुपयोग से बड़ा होता है, विद्या पढ़ने से बड़ा नहीं होता है, विद्या का सदुपयोग करे अच्छी तरह से तो बड़ा हो जाता है। इस तरह से नया प्राप्त बन जाता है, जिसका हित करने का ही स्वभाव है उसके पास वस्तुएं आती है। प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि जो उपकार का जिसका स्वभाव है, दुनिया का हित करता है, हरेक आदमी उसको पैसा देगा, धनी आदमी उसको पैसा दे देता है कि इनके पैसा जाएगा, ये हमारा दुरुपयोग नहीं होगा, ये खाएगा नहीं, खराब नहीं करेगा, लोगों का हित करेगा, तो लोगों के मन में देने की आ जाएगी। बिना प्रारब्ध के पैसा पैदा होता है, बिना प्रारब्ध के अपना जीवन अच्छा बना रहे तो मनुष्य जन्म है कितना कीमती है, ये अपने प्रारब्ध को बदल सकता है, अपने रहन सहन को और वायुमंडल को बदल सकता है। साधारण कहने वाला आदमी बड़ा आदमी हो जाता है केवल करने के कारण से, और बड़े घर में जन्म लेने वाला आचरण से बिगड़ जाएगा तो उसका पतन हो जाएगा, लोगों में इज्जत कुछ नहीं होगी। तो ये सब आपके आपके अधीन है, मनुष्य के अधीन है सब, संसार की इज्जत, संसार की प्रतिष्ठा, संसार की वस्तुएं ये भी, और पारमार्थिक तो है ही, उसका तो अधिकार खास है, परमात्मा प्राप्ति के लिए तो मनुष्य मिला है, मनुष्य शरीर कितनी विलक्षण बात है। अब से सुदूराचार्य भक्ति मार्ग में और ज्ञान है, अभिचेदी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृत तमा, पाप करने वालों में पाप कृत तम हो, पाप कृत, पाप कृत तर और पाप कृत तम, सबसे अधिक पापी सांग पाप, पाप करने वाला उसको भी ज्ञान हो सकता है, ये नहीं मान सकते वेदांत वाले, पढ़े लिखे नहीं मान सकते, वो कहते हैं अंतर शुद्ध होने से अधिकारी होता है। गीता कहती है अभी चेदसी पापे भय सर्वे भय, पापे भय में सर्वसुद्ध पड़ा हुआ है, फिर सर्वे भी रहेगा, सर्वे भय पापे भय और पाप कृत, उसमें पाप कृत तम सर्वं ज्ञान प्रवय नहीं हो जाए, ज्ञान भी नौकर चल जाएगा। टीकाकार कहते कि महिमा है, महिमा सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, इसे सिद्ध होता है ऐसे को भी तत्व ज्ञान हो सकता है, सांगोपांग पापी को भी तत्व ज्ञान हो सकता है, जिसके अधिकारी को होगा। तो ऐसी कई बातें, बहुत बातें ऐसी, गीता में है, साधु संतों से सुनी है, उनके सुनने से पीछे पता लगता है ऐसी बातें है, परंतु वो पढ़ करके उसको गोकर याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपका नाश करने के लिए काम देंगी वे युक्तियां और वे शास्त्र, आपका उत्थान नहीं करेंगे, परंतु करें क्या, उसको ही पूछे वहीं जानेंगे, उसी को पकड़ेंगे, उसी को मानेंगे। अर्थ तुम्हारे हर्ष क्या है, ऐसा श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ होगा उससे होगा। अरे पुस्तकों से होता है, पुस्तकों से है, मैंने पुस्तकों में लिखी, पुस्तकों में देखी है, पढ़ी है, तत्व ज्ञान होता है वो गुरु के द्वारा भी होता है, तो शब्द से होता है, स्पर्श से होता है, दृष्टि से होता है, और मानसिक दीक्षा होती है, मन से होता है, केवल मन से। इनमें खूब उदाहरण दिए हुए हैं, दृष्टांत दिए हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें आई है, पर शास्त्र को विशेष प्रकट नहीं है। अद्वैत अमृत वल्लरी एक पुस्तक है, बहुत पुराना, उसमें ये बातें लिखी सब, तो ऐसी बातें है विचित्र विचित्र। शास्त्रों में आप खोज करो, सत्संग करो, तो आप बहुत नई नई बातें मिलेंगी। सत्संग के द्वारा जितनी नई मिलती है, इतनी पुस्तकों के द्वारा नहीं मिलती है। सत्संग करने वालों ने, कराने वालों ने, कहने वालों ने कितनी मेहनत की है, कितने वर्ष मेहनत की है, और अपने आधी घंटा घंटा में सुना दी है, कितनी मुफ्त में मिलती है। इस बात से मैं कहता हूँ, सत्संग मिल जाए तो वो गोद चला गया, कमा करके लखपति करोड़पति बनने में जोर पड़ता है, पर गोद जलना वालों क्या जोर पड़ा, कल कंगला गया आज लखपति, जाए गोद बैठा कमाए हुए धन पर। इस तरह से सत्संग के द्वारा ऐसी बहुत सी विलक्षण विलक्षण अलग अलग खजाने की बातें मुफ्त में मिलती है, बिल्कुल गोद जावे, इस तरह से विचित्रता आ जाती है उसमें। हमने देखा है संस्कृत पढ़ना नहीं आता, शुद्ध अपना दस्तखत नहीं कर सकते, ऐसे आदमी सत्संग करने वाले हैं, बड़े बड़े पंडितों की बातें होती है, उनमें कहते हैं ये पंडित कैसे कहते हैं, ये बात ऐसी है, पंडित कैसे कहते हैं, ऐसी प्रश्न पत्र मैंने देखी, कितनी विशिष्ट बात है। आप गीता की बातें बताओ, गीता जो लगो गीते ये कहा ये कहा, परंतु साधारण गीता जानते हैं, सत्संग किया है, वे जो गीता का मर्म बताएंगे पंडित नहीं बता सकता, पंडिताई के तौर पर नहीं बता सकता। तो सत्संग के द्वारा कितने आदमी विलक्षणता आती है, अलौकिकता आती है, वो सत्संग का रस जिसको लगा है, जिसके बाद सत्संग से समझ में आई है, वो सत्संग छोड़ नहीं सकता, चिपक जाएगा। कितनी विचित्र बातें मिलती है, मेरे को बहुत बातें मिली पुस्तकों में नहीं मिली है, जैसे सत्संग के द्वारा स्वाभाविक मिली है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पर नहीं मिलती, वो मिलती सत्संग के द्वारा। नया आविष्कार है ये, नई बात है, बिल्कुल नई। अगर आप चाहो तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, बिल्कुल अपढ़ आदमी भी बहुत विलक्षण ज्ञानी हो जाता है, तत्वज्ञ हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। शास्त्रों की, वेदों की बड़ी बड़ी ऋचाएं, उनमें जो बातें लिखी है वे भीतर प्रकट हो जाती है, भीतर से जब परमात्मा के सन्मुख होता है, बुद्धि का जितना विकास होता है ना, इतना आपके ये अनुष्ठानों से नहीं होता है, क्रियाओं के कारण से उतना सिद्ध नहीं होता है, जितना ये भगवान के सन्मुख होता है उसमें होता है। बहुत विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, शक्ति आती है स्वतः, ऐसे काम करता है उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिसके स्वार्थ का त्याग दूसरे हित के लिए काम करता है तो उसके कार्य की सिद्धि भगवान की शक्ति से होती है। जो भगवान की शक्ति संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है, वो शक्ति उस व्यक्ति के साथ देने में, मदद करने में लालायत हो जाती है। जैसे माँ होती है, उसके सामने बेटा अगर भोजन करे, माँ भोजन करावे, तो वो जो जो भोजन करता है माँ के उत्साह बढ़ता है, अत्यधिक भोजन कर लेता तो माँ खुश हो जाती है। ऐसे जो ठीक शक्तियों का सदुपयोग करता है तो भगवान की जो शक्ति है, कृपा शक्ति है, भगवान में अलौकिक ज्ञान शक्ति है, वो शक्तियां ऐसी राजी हो जाती है तो वे जबरदस्ती उनके हृदय में आकर प्रकट होती है, नई नई बातें पैदा होती है जो कि पुस्तकों में बरसों तो आप पढ़ नहीं सकते, सुना नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसी बातें उसके हृदय में प्रकट होने लगी है, आपसे आप विचित्रता उसमें आने लगती है। आदर करे उनका, उनका आदर करे, उनको ठीक तरह समझे। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत है जो नया आविष्कार है ये, अब इसे लाभ लेना हो ले उनमें मतलब। जो सच्चा जिज्ञासु होगा और अपना उद्धार हृदय से चाहता है वो जहां जागे सत्संग सुन करके उसके असर पड़ जाएगा बिल्कुल। एकदम व्याख्यान सुने, उनका विवेचन सुने, विवेचन सुनते ही असर पड़ेगा, यहां कुछ चीज मिलेगी। और व्याख्यान सुन लिया, गिरकी का गथा सुन ली, ठीक है, अच्छी बात कर देगी, परंतु उसका मन नहीं लगेगा उतना, ये क्या है। बात बताइए ना, प्रयागराज के कुंभ की बात है, हमारे साथ एक साधु थे, अब उनका सही नहीं रहा, वे दो चार साधु गए व्याख्यान सुनने को, व्याख्यान हुआ तो मेरा लगा सीखे सीखे व्याख्यान की दुकान लगी, नहीं व्याख्यान तो वहां व्याख्यान होता वहीं होता है, तो वे जाकर सुनते शुरू हो गए, चाचो चलो डोका ना गए, सूखा डोका ना गए, चलो चलो अंदर बाल जी का डोका करा, पंद्रह ही छोड़ो मैं पत्ते भी छोड़ा गए, अरे डोका ना के बोला सर आगे देखो आगे देखो। वो सुनते ही समझ जाते हैं कि कहने वाले में कितना ज्ञान है, कितना बोध है, कैसी बात कहते हैं ये। साधु पूछा नहीं है, शब्द सुनाता हूं, शब्द सुनाते ही पहचान हो जाती है कि भीतर कितनी विचित्र बातें भरी हुई है। तो ऐसी विलक्षण विलक्षण बातों को वो जान जाते हैं, जो सत्संग करते हैं करने वाले हैं, बस वो जिज्ञासु है, वो हरेक जगह अटक नहीं चलता, बड़ी सुंदर सुंदर बातें, एक शब्द में रुआ दे, एक शब्द में हंसा दे, ऐसी बिल्कुल बिल्कुल चौथी जी बातें कहें, तो हरेक आदमी अटक जाता है, पर सच्चा जिज्ञासु अटकेगा नहीं, वो समझ रहे हो बाबा जी कहते हैं पानी में पता लग जाएगा उसका। तो ये नई नई बात होती है, नई विचित्र का बिना पढ़े लिखे वो बातें आ जाती है। तो सत्संग के द्वारा बहुत विलक्षण लाभ होता है, वो सत्संग किए हुए ही जानते हैं, सत्संग नहीं किए हुए नहीं जानते, उनको पता नहीं इन बातों का, पर सत्संग किए हुए जानते हैं बहुत विचित्र बातें, न जाने किस समय में क्या बात निकल जाए, तो वो चिपके रहते हैं, सुनते रहते हैं, बात बात में बात होती, जो केले के पात में पात, पात में पात, जो चतुर्ण की बात में बात, बात में बात, ऐसी दृष्टि होती है, अयोग्यता विचित्रता। तो वो जो जानने वाले हैं वो ही जानेगा, बिना पार के पता नहीं है। परीक्षा यत्र संत देशे नार्घ्यन्ति रत्नानि समुद्र जाने, आप ही हृदय से कृष्णचंद्रकांतम फिर भराते विपणंती गोपा। जहां परीक्षक नहीं है वहां अच्छे पुरुष की क्या परीक्षा होगी, गुण खड़े एक भाव घुसरा व्यवरा नहीं, नगरी में नहीं न्याव रोई भरी रे राजे, क्या समझ। जहां समझदार है वे महाराज परख करेंगे, थोड़ी बात को सुनते ही समझ रहे यहां कुछ विलक्षणता है, यहां कुछ अलौकिकता है, नई बात। जैसे कपूर का ढेला हो वो जाकर रख ले तो सभी पूछे यहाँ कुछ है, सुगंधी आती है, काय की आती है इसका पता नहीं, परंतु कुछ है यहाँ सुगंधी, जानने वाले वो कपूर ढेला पड़ा है उसकी सुगंधी है ये जान लेगा, परंतु जैसे तीन वर्ष रोग हो जाता है उसे सामने रख दो पता ही नहीं लगेगा, ऐसे साफ ऐसे भूल गए वो समझ नहीं सकते, सगले ही मैं सत्संग करा हमें तो सत्संग मारा बैठ, अरे सत्संग हो तो बात दीजिए, वो विलक्षण हो जाएगा आदमी, सत्संग जिसको मिलेगा ठीक तरह से उसमें विचित्र आ जाएगी। आपसे आप बिना उद्योग किए बिना परिश्रम किए उसमें बिना परिश्रम किए बिना मनन किए स्वतः स्वाभाविक उसमें अलौकिकता आ जाएगी, आप साफ है, क्योंकि वहां वो चीज है। ये असल बेचने वाले होते हैं बहुत, उनके कपड़ों में सुगंधी हो जाती है, कपड़ों में वे लगाते नहीं है पर हाथ लगते ही सुगंध हो जाती है। इस तरह सत्संग के द्वारा मनुष्य में विचित्रता आती है, विलक्षणता आती है, परंतु जानते हैं जानने वाले परीक्षा वे कर सकते हैं जिन्होंने सत्संग किया है वे जान जाते हैं इस बात को, नहीं तो हरेक आदमी नहीं जान सकते, हरेक को पता नहीं लगता। एक अच्छे जानकार आजकल में प्रसिद्ध कथाकार है, एक भाई ने उनसे पूछा कि महाराज ये तो संसारिक सुख है आनंद और होता है, आनंद और सुख का भेद पूछा तो डोंगरे जी महाराज चकराए। अरे भाई तुम्हारे क्या पता इस बात का, तो उनको जल्दी पता नहीं लगता कि ये कैसा है, पर बात पूछने पता लगे अरे कुछ जानकार है भीतर है कुछ इसके, तो ऐसी बात समझदार आदमी देख लेते हैं परख लेते हैं, पर परीक्षित आ जाए तो संसार परीक्षित है ही नहीं, उनके लिए सभी बरोबरी है, दूध ही है सब। अरे भाई दूध नहीं है, चावल और पानी भी सफेद हुए है, दूध और चीज है। ऐसे जो असली जानने वाले हैं सत्संग जिनों को असली मिला है वो हरेक जगह अटक जाए, हरेक कथा में ठहर जाए, हाथ की बात नहीं है, वे कोई तिरस्कार नहीं करते अपमान नहीं करते, परंतु उनका मन नहीं लग सकता वहां। जिसको बढ़िया माल मिला है अब सूखे चने से कौन माथा पच्ची करेगा, ऐसी बात है विलक्षणता है। तो सत्संग के द्वारा आदमी के एक नवीन सूझ होती है, नवीन सूझ विवेक के में विलक्षण प्रकाश आ जाता है, इस प्रकाश से लोग आश्चर्य करता है, माना सामान्य आदमी दिखे पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये बातें कहाँ से आ गई कैसे आ गई, तो ये संतों की कृपा से सत्संग के द्वारा ऐसी विलक्षणता आ जाती है। माता बहना जो पढ़ी लिखी नहीं है उन माताओं में विलक्षणता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है, बुद्धि में विचित्रता आ जाती है। वे किसी पढ़े लिखे से संत प्रश्न करे तो जिससे प्रश्न करे उसके कान खड़े हो जाए, भाई यहाँ सब समझ करके बोलो यहाँ काम नहीं चलेगा। शेर जी के यहाँ उनकी माता जी से ही शांत हो गया, तो गरुड़ पुराण बसने के लिए आए, कोई उनकी नारायण बलि कराने के लिए आए, तो पंडितों को होश हो जाता भाई यहाँ काम नहीं चलेगा, ठीक है बोलो अच्छे से हो काम, तो साथ जानते सभी। वो तो ब्राह्मणों का आदर कराने के लिए, ब्राह्मणों से कराने के लिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, परंतु वो जानकार है, वो गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे, तो शेर जी बैठे हरिकृष्ण जी बैठे मैं भी उसमें जाकर बैठा, तो वो कहने वाला है ना उसको चेत हो जाता है, बोलना है ढंग से, इस बात में भी असर पड़ता है आदमी पर, कैसे बोलो भाई कौन सी सभा है, सभा में कौन कौन बैठे हैं, किस तरह से है, और जैसे ऐसे हुए तो वो समझो चलो यहाँ तो सब कह जैसे सर बाबा वाक्यम प्रमाणो कहते बैठे कौन है ये तो जरा सोचो समझो, तो जोर आता है बोलने वाले को कि भाई यहाँ ढंग से बोलना है। तो ये सत्संग के द्वारा इन बातों की होती है परीक्षा, परीक्षा होती है ठीक तरह से, जैसे रत्न है वो परीक्षा परीक्षा नहीं होती है, कनक भूषण संग्रहण होती तो यदि मणि त्रिगुणी प्रतिबद्धते न च बिरौति न चापति शोभते भवती योज ये तुर्पचनीय। राजा के मुकुट में चढ़ने लायक मणि है वो सूतली में पुरो करके पग के बांध ले तो मणि बिजाई क्या करे, जान भी बच जाएगी समझिए। कनक भूषण संग्रहण होती तो यदि मणि त्रिपुणे प्रतिबद्धते न तो बिरौती न चापतिशो, न तो वह रोती है और न शोभा देती है। बांधने वाली के अकल का टक्का हो जाता है कि कैसी चीज है कहाँ लगाई है इसको, इससे भी बात है भाई वो समझ लेता है कि बांधने वाला समझ रहा है कहाँ लगानी चाहिए, ऐसे क्या क्या उपयोग करना चाहिए, किस चीज का किस व्यक्ति का किस समय का कैसे उपयोग करना चाहिए, यूं ही खर्च कर देते हैं, यूं ही बात कर देते हैं, पैसे को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। ब्याह सभा हो तो लाउडस्पीकर बढ़िया लाएंगे, सत्संग में हो तो रद्दी लाएंगे, सत्संग है ठीक है, समझते ही नहीं रही असली चीज है यहाँ पर। मेरी भीती भी बहुत, मैंने बहुत भोगा है ऐसा, मैं बहुत भटका हूँ, मेरे को पता है इस बात का। ब्याह में उधर नहीं हो गए, बहुत बढ़िया लाएंगे उनका। अब उसमें क्या होगा, खराबी ही खराबी है, फायदा क्या है? और जहाँ भरा फायदा है कुछ समझते ही नहीं। सत्संग है ठीक है, वो इतनी ज्यादा कर दो, बड़े सत्संग समझ नहीं सकते। सत्संग कीमती कितनी होती है, जिसमें जीव के सुधार उद्धार की बातें है, पर कौन समझे मारी बातों को, परवाह ही नहीं है। उनके कोई आदर भी नहीं, कोई सत्कार भी नहीं है। अच्छे अच्छे संत महात्मा है, उनकी परीक्षा ही नहीं, कोई यही गुस्से करते है। पर जानने वाले होते हैं उन पर असर होता है, भाई ये चीज बढ़िया है, यह मामूली बात नहीं है, यह विचित्र बात है, असर पड़ता है उनका, तो वे उससे बहुत लाभ उठाते हैं। नहीं तो पढ़े लिखे पंडित भी इन बातों से परिचित नहीं होते। अच्छे अच्छे शास्त्र जानने वाले हैं, पंडित है, परंतु वो समझ नहीं सकते उन बातों को। सत्संग नहीं किया, इसमें साधन नहीं किया, पारमार्थिक कोई जिज्ञासा नहीं हुई, वे क्या समझेंगे? नहीं समझ सकते, कैसी चीज बढ़िया हो पर कैसे समझेंगे। सत्संग के द्वारा विचित्र बातें होती है, ऐसी नई नया आविष्कार है। बहुत सी बातें मैंने सुनी है, बहुत सी पुस्तकों में पढ़ी है और विचार किया है, मैंने कही है, कुछ को काम में भी ली है मैंने, ऐसी विचित्र बातें हैं। आप लोग काम में आपके तत्काल फायदा होगा, विचित्र फायदा होगा, स्वाभाविक व्यवहार में स्वाभाविक आपके फर्क पड़ेगा। कल ऊपर गया था कि नहीं, सत्संग करो, सत्संग व्यवहार सीखना है तो सत्संग करो, व्यापार सीखना है तो सत्संग करो, अपना उद्धार करना है तो सत्संग करो। सत्संग के बातें वो चौधारा खंडा दुधारा होता है, ऐसा चौधारी बात मेरे चारों तरफ ठीक कर दोगे, ऐसा बुद्धि का एक विलक्षण विकास होता है। उस विकास में व्यवहार की बात, परमार्थ की बात, शास्त्र की बात पूछो तो वे इतना जानकार नहीं है, पर न होते हुए भी उनकी बुद्धि काम करेगी, विलक्षणता उसमें प्रकट हो जाएगी। जो पारमार्थिक साधक है और उन्होंने शास्त्र पढ़ा है, सत्संग किया है, जानकारों का सत्संग किया है। नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुधा जी महाराज द्वारा दिनांक 7 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनाशर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।